दूसरी तरफ में सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु से परीक्षित, इसलिए ये द्वारकाधीश के संबंध में ये लोग हैं। इसलिए परीक्षित को खुश करने के लिए पहले तो उन्होंने जब तक होश था ये कहा कि ये चतुर्भुज होकर के यहाँ पर कारागार में देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, उनको प्रसन्न करने के लिए। किंतु जब एकदम भावाविष्ट हो गए, लीला कथा में एकदम डूब गए, जब बाह्य बुद्धि नहीं रही तो स्वाभाविक जो असली चीज थी वो अपने आप उनके मुख से निकल गई। नंदस्तु आत्मजीकृत बनने, अर्थ इसका है नंद भी क्यों लगाया महर्ष पर, तू क्यों लगाया, इसलिए लगाया अरे अंश रूप में देवकी और वसुदेव के रूप में के पुत्र के रूप में चतुर्भुज वहां पर प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान के रूप में, नरलीला के अनुरूप में नहीं। इसलिए उनके आंशिक पुत्र हैं, उनका गर्भ से जन्म, गर्भ में तो थे किंतु गर्भ से जन्म नहीं हुआ, लीला नहीं हुई। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बड़े बड़े केश घुंघराले, 16 वर्ष की उम्र जैसे, सोने के मुकुट, सोने की करधनी, हाथ में सोने के कंगन इत्यादि लेकर के, ऐसा बच्चा नहीं होता। इसलिए भगवान स्वयं वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म की बातों को लेकर उन्होंने तो बहुत तपस्या की थी, सुतपा और कृष्ण उनको उन्होंने वर दिया था कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहां, किंतु प्रेम नहीं मांगा था, न मुक्ति मांगी, इसलिए पुत्र के रूप में किंतु नहीं भगवान के रूप में उनके घर में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी, जैसे कौशल्या के घर में ना चार भुजाओं को धारण करके प्रकट हो गए, ऐसे उनके घर में प्रकट हो गए, जन्म नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर ईश्वरत्व लेकर के आए और हाथ जोड़ करके देव की वसुदेव प्रार्थना कर रहे। किंतु ब्रज में क्या हुआ, जिस समय कृष्ण पैदा हुए ठीक उसी समय समम सुसुवाते, हरिवंश में ऐसा लिखा, हरिवंश पुराण में, जिस समय देवकी को के सामने भगवान प्रकट हुए ठीक उसी समय में आधी रात के समय इनको एक पुत्र हुआ, श्यामला सा छोटा सा, वो कृष्ण नरलीला के था, उनके गर्भ से पैदा हुए। यशोदा जी को मीठा मीठा कुछ दर्द सा अनुभव, उसमें थोड़ी सी मुच्छा का भाव आ न समझ सके, और उसके 8 घंटा के बाद में 15 मिनट के बाद में एक लड़की पैदा हुई जोग माया, इसलिए वहां पर जमज संतान हुआ यशोदा जी को और इनको पुत्र हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी के कथन का तात्पर्य क्या है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज कहते हैं आत्मा से जो जन्म लेता है, देवकी वसुदेव के लिए ये नहीं कहा गया किंतु इनके लिए कहा, आत्मा से जो जन्म होता है अपने से उसको कहते हैं पुत्र। आत्मज, दूसरे के पुत्र को नहीं आत्मज कहेंगे, आत्मा वही जायते पुत्र। एक व्यक्ति ही पुत्र के रूप में स्वयं जन्म ग्रहण करता है, पिता ही पुत्र के रूप में वहां पर जन्म ग्रहण करता है, उसी का अंश है वही। इसलिए नंद भी और यशोदा भी मैंने वहां पर जैसे उनका हुआ वैसे ही तू इनका यहाँ पर जन्म हुआ, वहां पर जन्म नहीं हुआ किंतु इनका जन्म हुआ। दूसरी बात बड़े मार्के की है, उसी श्लोक में आगे कहा गया कारयामास, उनका जो शौर्य इत्यादि का कार्य होता है जात कर्म जिसको कहते हैं, जात कर्म माने जन्म होने का कर्म। अर्थात माता से और पुत्र का जो संबंध होता है, नारी छेद इत्यादि जिसको कहते हैं, यहाँ पर गोकुल में हुआ, यहाँ पर मथुरा में उनका कोई नारी छेद इत्यादि का मामला, क्योंकि वो 16 वर्ष जैसे पैदा हुए और ये लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ पर उनका नारी छेद जात कर्म सवेरे हुआ, सब ब्रजवासी लोग आए, जात कर्म हुआ, नारी कटी और उनको संस्कार हुआ, दान इत्यादि लाखों लाखों गायों का ये सब दान हुआ, वहाँ पर कोई संस्कार भी नहीं हुआ और संभव कर नहीं था कि वहाँ पर दान पुण्य इत्यादि हो, यहाँ पर संभव। और भी आगे चल करके बहुत से ऐसे श्लोक हैं, नमोघ्यते अप्र पपुषे तविदंबराय गुंजावतंत परिपिच्छल लसन मुखाय पन्नत्रजे कौलवेत्रवेशानुवेनु लक्ष्मास्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, पशुपांगजाय पशु प अंग जाय, जायते पशु कहते हैं गायों को, प माने उसका पालन करने वाले, गायों का पालन करने वाले ब्रजेंद्र हैं नंद बाबा, और उस पशु प पशुओं को पालन करने वाले नंद बाबा के अंग से जो जिनका जन्म हुआ, पशुपांग जाय यहाँ पर वैसे कहा, बस देव देवकी के लिए ये कहीं भी प्रयोग हुआ। और भी कहते हैं नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरा, नखल आप ये सत्य सत्य करके बतलाइए, आप जसोदा के पुत्र नहीं है, जरूर पुत्र है, वहां पर भी देवी वसुदेव के लिए कहा गया जन्म बाधो देवकी जन्म बाधो, जैसे जननिवासो देवकी जन्म बाधो जदुबर परिषद स्वयं दुर्भिरश्चन धर्म श्रीचर विजिन सुस्मित श्री मुखेन प्रजपुर बनिता नाम वर्धयन कामदेव, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो वहां पर प्रणाम कैसे कहते हैं, आप देवकी और वसुदेव के पुत्र नहीं, ये तो बाद है, बाद में विवाद का विषय है, ऐसे लोग कहते हैं, ये प्रवाद है, लोग कहते हैं, कौन कहते हैं, मथुरा के बड़े बड़े ब्राह्मण लोग कहते हैं, किस लिए कहते हैं, दक्षिणा के लिए, उनको दक्षिणा मिलनी चाहिए, वो जिसके पुत्र को तीसरा पुत्र बना देंगे और नहीं को हाँ भी कह देंगे दक्षिणा दे दे, वो कह देंगे ये एकादशी केवल विधवा के लिए सभा के, वो भी दक्षिणा लेकर के कह देंगे, और राजाओं को निकालते हैं ना, तो वो सब कर देंगे, कह देंगे नहीं राजा महाराजा को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसे ही एकादशी के व्रत के उपाख्यान में ब्राह्मण को दे दिया दक्षिणा और उन्हें कहा नहीं नहीं एकादशी व्रत नहीं है, सधवा नहीं करेगी और राजा लोग भी नहीं करेंगे, वो जो स्त्रियां मर जाती हैं कोई काम की नहीं रह जाती हैं वो केवल करेंगी, और बलिष्ठ युवक ये सब नहीं करेंगे, वो ब्राह्मण जिनको खाना पीना नहीं मिलता है, निर्धन है, जो कोई काम करें वो लोग करेंगे, ऐसे ऐसे वो लोग कह दें, तो पुत्री तो पीछे हुई ना, पहले पुत्र हुआ, पहले जिस समय देवकी को तो वही तो कहा था मैंने, जैसे वो कुछ निश्चित हो गई जो माया ने उनका ऐसा कर दिया, जैसे वो समझ नहीं सकी हमको कन्या हुई कि कन्या पुत्र दोनों हुआ कि क्या हुआ, पीछे जब की नाक खुली जब तक भाइयाँ आ गई थी हाँ वो सब तो सो रहे थे मीठी मीठी ऐसी ही जो माया की दिया, पीछे जब सवेरे आए देखा ये तो पुत्र है, और रोहिणी इत्यादि दौड़ करके आए देखा ये पुत्र और कन्या दोनों, इस तरह से ऐसा हुआ, ये जोग माया का, यही तो ऐसी चीज है जो बड़े बड़े विद्वानों के मति को भूल जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी जब भाव में विभोर हो गए ये परीक्षित बैठे हैं, ये जब याद नहीं गई तो जो परम सत्य था वो उनके मुख से निकल गया। उस समय राजा परीक्षित को प्रसन्न करने की कोई भावना नहीं, इसलिए नंदस्तु आत्मजुत्पन्न और पशुपांगजाय पशुपांगजाय ये बताया। दूसरी बात, पुत्र किसका, कौन माता पिता है? कर्ण को, कर्ण पहला संतान था कुंती का, वो परीक्षा कर रही थी मंत्रों का, सूर्य का आवाहन किया और सूर्य आकर के प्रकट हुए और साथ ही साथ में दिव्य दृष्टि से देखा और साथ ही साथ कान से एक पुत्र पैदा हो गया। अरे ये पुत्र पैदा हो, लोग क्या कहेंगे, अभी मैं 12-14 वर्ष की अभी किशोर लड़की हूं और मुझे पुत्र हो गया। बड़ी लज्जित थी, किसी से कहा नहीं और उसको एक बात किसी दोने में रख करके उसको नदी में, वो जमुना नदी में उसको प्रवाहित कर दिया। पीछे से एक धीवर को ये कि स्त्री को वो मिला और उसने उठा करके पालन पोषण किया, फिर दुर्योधन की उस पर कृपा हुई और उसका पालन पोषण करके फिर उसको राज्य दे करके अपना मित्र बनाया। कहती है, कहता है कर्ण से और कुंती का भेंट हो गया, कृष्ण ने भेंट कराया, उन्होंने कहा कि तू मेरा पुत्र है। तो मैया, मैं तेरा पुत्र नहीं जानता हूं, तेरे कोख से मैं पैदा हुआ, किंतु तुमने तो हमको फेंक दिया, पालन पोषण किया नहीं, और जो हमारा पालन पोषण किया अब तुमने फेंक दिया, उसी समय पुत्र का संबंध तो उसी समय टूट गया। अब जिसने पालन पोषण किया वही हमारा माता है ना, इसलिए कभी भी उनके तरफ में नहीं गए। कृष्ण ने समझाया, पांडवों ने समझाया, कौंती ने समझाया, भीष्म पितामह ने भी बतलाया अपनी प्रतिज्ञा पर। यहाँ पर भी वैसे सुनो, हाँ युद्ध के समय, हाँ युद्ध के समय तो अभी समय था उठ जाने का, किंतु नहीं। और इसी तरह से वसुदेव देवकी ने कृष्ण को मान लिया कि कृष्ण ही का पुत्र है, वसुदेव जी के पुत्र हैं। अच्छी तरह से सुनना, तुम लोग सभी ब्रजवासी हो, मैं मथुरावासी किसी को नहीं देखता, मैं सब तुम लोग ब्रज के रहने वाले और रहने वाली हो, यशोदा जी के संबंधित हो, मान लिया कि इनका पुत्र हुआ। और उन्होंने बचपन में ही एक दिन का भी नहीं हुआ और उसको लेकर के दे आए गोकुल में, मान लिया जैसे ठीक है इनके पुत्र हैं, दे दिया और वहां से एक कन्या ले आए। अब वो कन्या को लेकर के आए और पुत्र को दे दिया, अदला बदली हो गई है। यदि अंत में अपने इस लड़की को लेकर के वहां दे करके और कृष्ण को ले आते तब उनका शक तो उस पर होता, और समझ में लड़की अदल बदल हुई ना। हमने एक गाय खरीदी, उसके 5,000 मूल्य हमने दिए, गाय अपने खूटे पर बांध दी। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी आया जिसकी गाय थी, महाराज हम गाय नहीं बेचेंगे, तो नहीं बेचेगा तो तुम हमारा पैसा लौटा दो, तुम गाय ले जाओ। तो मैंने 5,000 रुपया उसे ले लिया और गाय लौटा ले करके चला गया। वैसे ही ये लड़की के मूल्य पर अपने लड़के को दे आए थे, लौटाया कभी उस लड़की को, लौटाया कि नहीं लौटाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं, कभी लौटाया नहीं, तो उनका कैसे सत्य बन गया जो उनका पुत्र है। लड़की लेकर के उनके हाथ में आई और कंस के हाथ में आई, आकाश मार्ग में उड़ गई, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में हो गई। कभी लौटाने का प्रश्न नहीं हुआ, हमारा रुपया लौटा दो, अपनी गाय ले जाओ, अपनी लड़की हमारी दे जाओ, अपना लड़का ले जाओ, तो कभी दिया नहीं। तो इसलिए कैसे कह सकते हैं कि हमारा पुत्र है? यदि वो लेकर के रखते हैं तो वसुदेव की देवकी की बेईमानी करते हैं, उनको लड़की पहले लौटाओ। दूसरी बात, और भी बहुत सी इसमें बातें, प्रमाण भी बहुत हैं। कृष्ण वहां पर एक, जबकि वो कंस ने उस लड़की का पैर पकड़ा और पत्थर के ऊपर में मारना चाहा, इतने में हाथ से वो निकल गई, और निकल करके आकाश मार्ग में चली गई। एक शेर खड़ा है ने? और अष्टभुजा हो गई, हाथों में त्रिशूल इत्यादि बहुत प्रकार के अस्त्र हैं। उसने एक पैर से झटका दिया कंस को और वो चारों खाने चित्त होकर के गिरा। वो तो बच गया किसी प्रकार से, उनके छूने मात्र से ही। हजरे कंस, तू जो मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया। कहीं और क्यों कहा, तो जेल की बात थी, वो कहते थे यहीं पर पैदा हुआ था, कहीं चला गया। और पैदा हुआ, ये पैदा का शब्द वहां पर क्यों उच्चारण किया, इसलिए वहां पर पैदा हुआ। दूसरी बात, इसी को सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, इस दृश्य को अदृश्यत अनुजा विष्णु, अर्थात वो जो दुर्गा जी थी, वो जो जिसको वसुदेव महाराज जी लाए थे, वो कन्या कंस के हाथों से निकल करके आकाश मार्ग में चली गई और अदृश्यत अंतर्ध्यान। वो कौन थी, विष्णु, विष्णु और अनुजा, विष्णु की अनुजा। अच्छा, ये कौन विष्णु है जिनकी अनुजा, अनुजा माने किसको कहते हैं, अनुजा, जो पीछे से जिसका जन्म हुआ, अनुजा या अनुज, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के अनुज हैं, ना? पीछे पता पैदा हुए साथी में, इसलिए विष्णु की अनुजा ये कैसे हुई, जेलखाना में वो देवी जी का जन्म हुआ, तब तो यहाँ के जो होते कृष्ण या अर्काधीश वाले, मथुराधीश वाले, तब तो उनकी अनुजा होती, मान लेते, किंतु वहां बल्कि सुभद्रा जी का जन्म हुआ था। सुभद्रा जी कृष्ण और बलदेव जी की अनुजा हो सकती हैं, किंतु वो जो देवी जो आकाश में चली गई, वो उनकी अनुजा नहीं थी। किसकी अनुजा थी, कैसे, जो झूठ तो लिख नहीं सकते, इसलिए हरिवंश पुराण और दूसरे पुराण जो है वहां उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, उसके थोड़े देर के बाद में वो पैदा हुआ। इसलिए कृष्ण का जब यहाँ जन्म हुआ, तभी उनका वहां पर नरलीलावत छोटे शिशु का जन्म हुआ ने? और थोड़े देर के बाद ही में वो अनुजा, वो देवी महाजोग माया जी का जन्म हुआ। इसके बाद में वसुदेव जी उस लड़की को लेकर के इधर में आए और कंस ने उसको छीन लिया और शिला पेश कर उसे दृश्यत अनुजा, अर्थात वो अनुजा थी, वो गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। इसलिए अनुजा ने किसकी, विष्णु को, वो विष्णु कौन, कृष्ण कौन, कृष्ण नंद नंदन कृष्ण। दूसरी बात, जितने भी पुराण शास्त्र हैं उनमें उपनिषदों में बहुत सी गोपाल सातवीं इत्यादि उपनिषद हैं जो भगवान के लीला रहस्य को वर्णन करती है। उसमें उनका जो मंत्र है, कृष्ण का जो मंत्र है, वो कैसे मंत्र है, जैसे मान लीजिए गोपाल मंत्र है। गोपाल मंत्र में हम देवकी के पुत्र हैं, इस रूप में उनका ध्यान करेंगे न किस रूप में करेंगे, गोपियों के प्राण वल्लभ है ये गोपाल मंत्र है, ये वैष्णव का प्रधान मंत्र है, गोपी जन वल्लभ, ये गोपी के वल्लभ हैं, गोपियों से इनका संबंध नहीं, जिनके सिर पर मुकुट नहीं, हाथों में बांसुरी नहीं अधरों पर, जो गोप का वेश नहीं है, गायों को जो चराते नहीं है, ब्रज से वैसा संबंध नहीं है, गोपियों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। और भी गोपाल तापनी उपनिषद इत्यादि ने उनको यशोदा जी का खास पुत्र माना गया है। उसी श्लोक में जैसी जननिवासो देवकी जन्म बाधो जदुपर परिषद स्वयं दौर फिर धर्मन फिर चर नग्न सुस्मित श्री मुखे न ब्रजपुर वनिता नाम वर्धन, ब्रजपुर के वनिताओं की किशोरियों के मन को हरण करने वाले ये हैं, इसलिए यहां से मथुरा से संबंध नहीं, ये उस नंद नंदन के प्रकाश हैं, ने? उनके अंश कहे जाएंगे, क्योंकि मथुरेश जो कृष्ण हैं, जिसमें वसुदेव जी ले जा रहे थे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की आप बच्चे हो जाइए नहीं तो कंस आकर के मारेगा, उसी समय में वहां जो पैदा हुए थे गोकुल में, वो झट आकर के द्विभुज में चतुर्भुज को अपने अंदर में प्रवेश करा दिया, किसी ने देख नहीं पाया, और वही प्रकट होकर के फिर उनको वसुदेव जी ले गए, उस पुत्र को रख दिया, उसको ले गए। और वही जबकि ब्रज की लीला समाप्त हो गई, जब अक्रूर ला रहे थे तो रास्ते में ब्रह्म सरोवर पड़ता है, जहाँ भातरौल है मथुरा और वृंदावन के बीच में, वहीं पर वो ध्यानस्थ हो गए और सरोवर में स्नान करने लगे। इतने में देखते हैं, जैसे कृष्ण को जल में भी देखते हैं वहां पर भी देखते हैं, और इतने में कृष्ण और बलदेव जो ब्रज वाले थे वहां से चले गए ब्रज में, और जो वसुदेव नंदन कृष्ण और बलदेव थे वहां से रथ पर उनके साथ में बैठ करके चले आए। ये भी रहस्य किसी को पता नहीं चला, योग माया के प्रभाव से ऐसा सब लोगों ने ऊपर से समझा कि यही दोनों एक ही हैं, एक है ठीक है, किंतु मूल तत्व कृष्ण है, ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर। इसी दृष्टि से श्रीमद् भागवत में अनत्र सब जगह वर्णन किया गया है, इसलिए वो वहां पर आ गए और कृष्ण यहाँ पर चले आए। ये बलदेव जी हैं वो कौन है? रोहिणी के गर्भ से लिया ना, देवकी के गर्भ से सातवें गर्भ में, और वहां रोहिणी के गर्भ में गोकुल में वहां पर उनके गर्भ में रख दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। सातवां गर्भ पहले यहाँ था और उसी समय रोहिणी को भी गर्भ था, एक साथ ही दोनों का गर्भ था। इस गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में देना, मैंने वहां पर जो बलदेव रोहिणी नंदन है उसमें ये प्रवेश कर गए, जैसे यहाँ वाले कृष्ण को वहां ने आत्मसात कर लिया, एक में मिला लिया और द्विज रूप में हो गए, ऐसे यहाँ वाले बलदेव को रोहिणी के पुत्र में मिला करके दोनों एक होकर के असल में वही बलदेव मूल है, वही बलदेव के अंश हैं द्वारकाधीश या मथुरा कृष्ण बलदेव। इसलिए कहा गया वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। कृष्ण जो हैं बलदेव जी जो असल देव, वो कभी भी वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाते, इसलिए सब प्रकार से सामंजस्य करके आचार्यों ने भक्तों ने ये स्थिर किया यथार्थ में यशोदानंदन ही है और उनके अंश हैं ये देवकी नंदन। दोनों एक ही तत्व होने पर भी रसगत थोड़ा सा विचार है, जैसे राम और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, किंतु रसगत कुछ वैशिष्ट है। अष्टमी के दिन ये पैदा हुए, अष्टमी की रात में क्यों क्यों पैदा हुए? रात अंधेरी थी ना, कृष्ण क्यों काले हुए? काले होने का भी कारण ये गाती हैं, इनको कहेंगे वो गाएंगे पीछे, अंधेरी रात थी, अंधेरी रात की वजह से काले हो गए। अथवा गोपियां आंख में अंजल लगाती हैं और कृष्ण को अपने आंखों में बसाए रखती हैं, इसलिए वो काले हो गए, और काली गैया का दूध पिया इसलिए काली हो गए, इसलिए कि जमुना में स्नान किया जमुना जी काली हैं काले हो गए, या कृष्ण के वजह से स्नान करने से जमुना जी भी काली हो गई। ये काले हैं ना, काले किंतु टेढ़े भी हैं, इसलिए पूर्ण चंद्र के रूप में नहीं आए, ये टेढ़े के वक्र चंद्र के रूप में आए, जो किसी के हृदय में यदि जाएंगे तो सीधी चीज तो निकल आएगी, टेढ़ी चीज नहीं निकलेगी, इसलिए कृष्ण वक्र होकर के जन्म ग्रहण किया। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं कृष्ण से इस सब शिक्षाओं की, समय पर हम लोग हम इन सब का वर्णन करेंगे, बहुत प्रेम सुनेंगे और ये सब समय धारणा रहेंगे। कृष्ण जो है ये यशोदा जी के पुत्र हैं, किसी के कहने से भी नहीं, जिनको ये धारणा नहीं वो भले ही उनको माने वसुदेव ठीक है, वो लोग हमारे प्रलंब हैं। कृष्ण तो एक साथ में दस जगह पैदा हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, वहां पर भी हो, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हुए, वहां पर भी हुए, वहां पर पूर्ण रूप से हुए, यहाँ पर आंशिक रूप से, यही केवल उन्होंने तपस्या किया था पुत्र के लिए उनके हाथ उसमें आए, और उन्होंने कहा था जी हमको प्रेम हो वात्सल्य, इसलिए वात्सल्य प्रेम के रूप में वहां पर पुत्र के रूप में, और वात्सल्य प्रेम वहां पर आशा, इसलिए वहां पर भी प्रकट हुए। इस तरह से हम लोग आगे कृष्ण की लीला कथाओं का रसास्वादन करेंगे। समय आने पर बीच बीच में मैं भी कुछ द्वैत श्लोकों का की व्याख्या कर दिया करूंगा। अब कृष्ण का लीला चरित्र आ रहा है, बड़े प्रेम के साथ में आप लोग इसका, कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हैं,
एक है द्वारका की लीला और एक है ब्रज की लीला। द्वारका मथुरा की एक लीला और दूसरी है ब्रज की लीला। ब्रज लीला पहले हुई, इसके बाद में मथुरा की लीला, इसके बाद में द्वारका। ब्रज की लीला भी एक बाल्यकाल का, बचपन से 3-3.5 वर्ष तक ये गोकुल में हुई और इसके बाद में 3.5 से लेकर के करीब करीब 9 वर्ष तक ये पौबंध लीला कहलाती है। बच्चों को चराना, सखाओं के साथ में खेलना और उसी समय में उनके अंदर में पूर्वराग होता है, गोपियों से प्रीति भी होती है किंतु अभी लुप्त छिप करके होती है, ये पौबंध की लीलाएं। और इसके बाद में ये किशोर लीलाएं जब सखा सखी सबको छोड़ करके ब्रज की लीला में रास इत्यादि लीलाओं में प्रमुख हो जाते हैं। उद्धव के जब ब्रज में गए, भ्रमर गीत का संदेश दिया उनको, वहां से फिर उत्तरार्ध की लीला समाप्त आरंभ होती है, वहीं तक की यहां तक पूर्वार्ध लीलाएं किशोर की लीलाएं। आप लोग इस सबका वर्णन खूब अच्छी तरह से ध्यान देकर के सुने। गौ प्रमानंदे बोलो नंदनंदा चारों तरफ में असुर लोग स्त्री पुरुष वेश में सब लोगों को सताने लगे, हरे वृक्षों को काटने लगे, ब्राह्मणों को ऋषियों को मारने लगे। तो भक्तों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो अब कीर्तन करना चाहिए जैसे भगवान हमारी रक्षा करें, इसलिए उन लोगों ने कीर्तन करना आरंभ किया। आप लोग भी कीर्तन करें जैसे पुतना इत्यादि कोई ब्रज में अनिष्ट न कर सके। कैलाश में शंकर जी को पता चला कि हमारे प्रभु ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। इसके पहले की एक दिन की बात है, कंस ने देखा कि उनके जितने भेजे हुए असुर जा रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा उनको सबको मार डालता है, पता ही नहीं चलता जी किस प्रकार से मारता है। कंस ने सोचा कि मैं छुप जाऊंगा, इधर देखो इधर कहाँ जा रहा, अरे वहां पर भैया छोड़ना ही नहीं चाहते। जल्दी चलो हम कुछ कथा कहें। तो कंस ने देखा कोई भी व्यक्ति वहां से लौट करके नहीं आ रहा, इसलिए उसने सोचा कि मैं खुद ही जाऊं और कृष्ण को किसी प्रकार से मारा।
बैठ बैठ चुपचाप,
सब लोगों का मन आकर्षण कर दिया।
तो ये तो मत करो, अभी एक तो ठहर जाओ थोड़ा,
अभी थोड़ा सा ठहर जाएंगे। तो कंस खूब सज धज कर और अस्त्र शस्त्र लेकर गोकुल गया, जमुना नदी को पार जहां ही किया तो एक छोटी सी डोकरी मिली बूढ़ी, भैया तू कहां जाएगा, अजय मैं नंद भवन में जाऊंगा। किस लिए, कुछ बतलाया नहीं, वो समझ गई वो जोग माया थी। मैं अच्छा ठहर, बस उसको पकड़ करके और पासी में सरोवर था उसमें डुबा दिया और देखते देखते वो बूढ़ी डोकरी बन गया, सफेद केस हो गए, दांत टूट गए और एकदम दुबली पतली डोकरी सी हो गई। और वो उसको पकड़ करके गोकुल में ले गई और गोबर के कंडे पाथने में उसको ऐसे ऐसे करने में लगा दिया। और जो कोई ब्रज से आता 2-4 लाते उसको जमा था, इस प्रकार से सभी जितनी औरतें थी पुरुष थे अपने लातों से घूसों से उसे मारते और वो कुछ कर नहीं सकती। यदि उस रूप में मथुरा में लौट आए तो कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए लज्जा के मारे न तो मथुरा में ही आई और न तो किसी से कहा कि मैं कंस हूँ और इनको मारने के लिए आया। जब बहुत दिन कुछ हो गए, 5-7 दिन हो गए, तो उनको दया आई, रोने लग गया। तो रोने लग गया तो जोगमाया फिर आई, बोली जैसे तू फिर कभी ब्रज में आएगा, तू कान पकड़ के अब कभी भी मथुरा को छोड़कर के ब्रज के किसी भाग में मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कान पकड़ करके कहा, जैसे मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ ब्रज में कभी भी नहीं जाऊंगा, इसलिए खुद कहीं भी ब्रज में अब नहीं गया और कंस रूप होकर के फिर घर में लौट आया। इसलिए कभी नहीं गया बल्कि दूसरों को भेजता रहा मरवाने की चेष्टा। शंकर जी को पता चला ये हमारे प्रभु आराध्य देव नंद नंदन के रूप में वहां पर यशोदा जी के भवन में है और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। कैलाश से वो बैल पर चढ़ करके नंदी के ऊपर में आए, हाथों में त्रिशूल और गले में मुंडमाला, अवघड़ वेश, बड़ा भयंकर वेश धारण कर वहां पर सर्पों की माला, हाथों में कंगन भी सर्प के और कमर में करदनी भी सर्प के है। और उसको लेकर के जब वहां गोकुल में आए तो वहां पर अलख निरंजन करने लगे। कृष्ण को पता चला कि हमारा कोई भक्त आया है और वो मेरा दर्शन करना चाहता है, किंतु यशोदा मैया को पता चला कि पास में ही कोई हमारे दरवाजे पर कोई जोगी आया है और बड़ा विकराल वेश है, उन्होंने घर के अंदर में छिपा दिए और कभी भी इसको नहीं दिखलाऊंगा ऐसा मनस्थ करके और घर में छिपा करके अपने गोदी में लेकर के उसको रखने। शंकर जी को अवसर नहीं मिल रहा ये दर्शन मिले। अब वो सोचे जे कैसे दर्शन होगा, इसलिए मन ही मन में प्रार्थना है, प्रभु मैं बहुत दूर से आया हूँ आपकी इस बाल लीला का दर्शन करने के लिए, आप कृपा करके एक मिनट के लिए भी एक झलक आप अपनी दर्शन दे दें। कृष्ण से रहा नहीं गया, सोचे जी इनको किसी प्रकार से दर्शन दें, किंतु यशोदा मैया जो छोड़ नहीं रही, उन्होंने वो डमरू लिया, डमरू बजाने लगे शंकर जी और उसी के माध्यम से कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन किए बिना यहाँ से हिल नहीं सकता, आप कृपा करके मुझको दर्शन दें। डमरू का बजना और कृष्ण रोने लग गए। अब यशोदा मैया जितना उनको चुप कराए किंतु वो उतना ही अधिक रोने लग गए, हाथ पैर छोड़ने लगे। यशोदा मैया ने भी कहा चलिए क्या हो गया इसको, पास पड़ोस की गोपियां आ गई, बोलिए जैसे तैसे उस जोगी को दिखला दो वो वहां से चला जाए, उसने ही शायद मंत्र पढ़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अंत में यशोदा जी को जब इस प्रकार से कहा तो यशोदा जी ने कहा अच्छी बात है तो इसको दर्शन करा दूं। उन्होंने हाथों में काले धागे बांध दिए, ललाट में बहुत लंबा काला तिलक लगा दिया, आंखों में लंबी अंजन यहां तक लगा दिया, उसके ठोड़ी में काला वहां पर लगा दिया, पैरों में भी काला और काले वो लठरिया पैर में और उसमें दोनों में बांध दिए, नजरिया उसको बांध दिया पैरों में उसमें और बांध करके काले कपड़े से ढक दिया और गोदी में उनको ले लिया और काले कपड़े से ढक करके जब सामने ले आई तब देख तू फिर अभी तू चला जाएगा तो तुमने यहां मैया मैं तो इसको देख करके चला। बस एक झलक उन्होंने अपने अंचल को हटाया और उसको एक क्षण के लिए बस दर्शन दिया, पलक लगते और झट उसको ढक करके और घर में चली आई, ये कहीं इसकी नजर न लग जाए। तो ऐसे शंकर जी भी उनके दर्शनों के लिए आते। इसी प्रकार से एक फल बेचने वाली कुंजड़ी कुंजड़ी थी, वो रोज सुनती थी नंद के घर में मानव मूर्तिमान रूप धारण करके ही न जाने कौन आया है, बहुत ही सुंदर लड़का है। वो रोज जाती और नंद भवन के चक्कर काटती, किंतु कृष्ण कभी सोए मिलते कभी कुछ मिलते, उनका दर्शन नहीं हो पाता। अंत में उसने आज तो प्रतिज्ञा की, यदि दर्शन मुझे नहीं मिला तो आज मैं आऊंगी नहीं, मैं वहीं पर उसके दरवाजे पर रह जाऊंगी और किसी न किसी प्रकार से उसका दर्शन करूंगी। ऐसा विचार ठान करके वहीं पर फलों से भरी हुई टोकरी उतार दी और वहीं से बैठ करके थक गई। घूमते घूमते वो कहने लगी, फल लो और करते 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 गोविंद लो माधव लो गोपाल लो, इस प्रकार से कहती हुई बावड़ी सी।